नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सहायक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों को अलग करने और उत्पादन के लिए देश में पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है।
इस योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों में घरेलू क्षमता का निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाना है। योजना की अवधि 6 वर्षों के लिए चालू वित्त वर्ष से वित्त वर्ष 2030-31 तक होगी। यह योजना नई इकाइयों में निवेश के साथ साथ मौजूदा इकाइयों की क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण पर भी लागू होगी। योजना के तहत प्रोत्साहनों में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उत्पादन शुरू करने के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और संबंधित उपयोगिताओं पर 20% पूंजीगत व्यय सब्सिडी शामिल होगी। योजना के अंतर्गत शुरू होने वाली पहलों से कम 270 किलो टन वार्षिक रिसाइकिल क्षमता विकसित होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 40 किलो टन वार्षिक महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन होगा। इन पहलों से लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और लगभग 70,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में आयोजित सेमीकंडक्टर इंडिया 2025 के दौरान सेमीकंडक्टर जगत के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सभी सीईओ का भारत की क्षमता पर विश्वास स्पष्ट है और वे सेमीकंडक्टर नवाचार तथा विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वाडेफुल ने आज नई दिल्ली में वार्ता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि दोनों पक्षों ने राजनीतिक सहयोग, सुरक्षा, रक्षा, जलवायु, भावी तकनीकों और लोगों के बीच परस्पर विचारों का आदान प्रदान किया।
We have just completed a very productive discussion on India-Germany cooperation, on our relationship with the European Union, and we have exchanged views on regional, global and multilateral issues. We've had detailed discussions on various aspects of our ties. This includes our political cooperation, security and defense, economic relations, research and future technologies, climate and energy, as well as education, skilling, mobility and people-to-people exchanges.
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जर्मनी ने आतंकवादी हमलों से भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन दो दिन की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें देश के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इनमें कर दरों को युक्तिसंगत बनाना और अनुपालन को सरल बनाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जीएसटी के अगली पीढ़ी के सुधारों के महत्व पर बल दिया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के करेगुट्टालू पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों को सम्मानित किया। श्री शाह ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान जवानों की बहादुरी और पराक्रम को नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश से कई राज्य जलमग्न सड़कों और बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में बादल फटने की कई घटनाओं से अचानक आई बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता हैं। पंजाब में मूसलाधार बारिश के कारण भाखड़ा, पौंग और रंजीत सागर बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने और सतलुज, ब्यास तथा रावी नदियों के उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इससे 1,600 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल बाढ़ प्रभावित पंजाब का दौरा करेंगे। वे सबसे ज्यादा प्रभावित अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला जिलों के कुछ गांवों में प्रभावित लोगों से मिलेंगे। बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के सुपर फोर दौर में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबला 2-2 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।